يبقى اسمه لقد. سب سب طرف والے یوا ہاتھ اٹھا. ڈائمنڈ جوبلی میں یوا کیا کریں گے؟ یوا میں ڈبل شکتی ہے, شاریرک شکتی بھی ہے تو آتمک شکتی بھی ہے. تو ڈبل شکتی سے ڈائمنڈ جوبلی میں کیا وشیشتا دکھائیں گے؟ ریلی نکالنا, فنکشن کرنا, یہ تو کرتے ہی رہتے ہو. کتنے باری کیا ہے؟ بہت بار کیا ہے. ابھی کیا کریں گے؟ ہر ایک یوا جو آج کل کے اجانی یوا ایسوسیشن ہے یا گروپ ہے جو اور بھی دیش میں نقصان کرتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی تنگ کرتے ہیں, ایسا کوئی ایسوسیشن تیار کرنا ہے. اس میں سے جو ایسے نقصان کرنے والے ہیں انہوں کو پریورتن کر کے دکھانا ہے. پریکٹیکل میں ہر ایک یوا اپنے اپنے سیوا ستھان پر ایسا پریورتن کیا ہوا گروپ تیار کرو. جو بھی زون آئے ہیں ہر ایک زون میں کہاں 100 ہے, کہاں 50 سیوا کیندر ہے, گیتا پاٹھ شالا ہے تو بہت ہے, لیکن ہر ایک زون اپنے ایریا میں جہاں جہاں سیوا کیندر ہے وہاں سے ایسے پریورتن کیا ہوا سیمپل تیار کرو. آپ لوگوں کو معلوم ہے جب ڈاکوؤں کا ہوا ہوا تھا تو ایک ڈاکو پریورتن ہوا, ایک ایگزامپل نکلا اور دیکھا گیا کہ ایک ڈاکو کہاں بھی اپنا انوبھو سناتا تھا تو سبھی کو بہت رچی ہوتی تھی. تو آپ لوگ پھر ایسے ایسوسیشن جہاں سنگٹھن ہوگا وہاں سے جتنے تیار کر سکو اتنے نکالو, ایگزامپل تیار کرو. پھر سبھی زون کے جو نکلیں گے ان کا وشیش سبھی کا مل کر کے فنکشن رکھیں گے اور اس میں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو دکھائیں گے کہ یہ یوا کیا کرتے ہیں اور وہ یوا کیا کرتے ہیں. تو یوا تیار ہے؟ نمبر لینا ہے ہاں یا نہ؟ کتنا ٹائم چاہیے؟ ڈائمنڈ جوبلی کے 6 ماس چاہیے, 4 ماس چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے؟ مہاراشٹر کے یوا کیا کریں گے؟ جواب دو. مشکل لگتا ہے کیا؟ تو جو ہاں کہتے ہیں کریں گے وہ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا, یو پی والے کریں گے؟ ہاں بولو یا نہ بولو. کتنے ٹائم میں کریں گے؟ ڈائمنڈ جوبلی کے 6 ماس چاہیے. 6 ماس کے بعد ایسے نہیں کہنا تو کوئی مانتا نہیں, دوبارہ مارکس دے دو. چاہے کوئی زیادہ ایگزامپل تیار کرے کوئی کم کرے, لیکن نا شبد نہیں آنا چاہیے. تو اس میں پہلا نمبر کون لے گا؟ ٹیچر سمجھتی ہے ہو جائے گا, ہونا ہی ہے. گورنمنٹ کو پریکٹیکل مثال چاہیے. آپ لوگ کہتے ہو نا ہم سوشل ورکر سوشل ورک بہت کرتے ہیں, تو وہ مثال چاہتی ہے. تو ایسا گروپ تیار کرنا ہے اور ٹیچرز کا کام ہے کرنا. اچھا, ابھیکت مرلی 13 دسمبر 1995 یوکوں سے ملاقات. کیا کہہ رہے بابا؟ سب طرف پہلے یوا ہاتھ اٹھاؤ. ڈائمنڈ جوبلی میں یوا کیا کریں گے؟ یوا میں ڈبل شکتی ہے, شاریرک شکتی بھی ہے تو آتمک شکتی بھی ہے. تو ڈبل شکتی سے ڈائمنڈ جوبلی میں کیا وشیشتا دکھائیں گے؟ ریلی نکالنا, فنکشن کرنا, یہ تو کرتے ہی رہتے ہو. کتنے باری کیا ہے؟ بہت بار کیا ہے. ابھی کیا کریں گے؟ ہر ایک یوا جو آج کل کے اجانی یوک یوا ایسوسیشن ہے یا گروپ ہے جو اور بھی دیش میں نقصان کرتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی تنگ کرتے ہیں, ایسے کوئی ایسوسیشن تیار کرنا ہے. اس میں سے جو ایسے نقصان کرنے والے ہیں انہوں کو پریورتن کر کے دکھاؤ. پریکٹیکل میں ہر ایک یوا اپنے اپنے سیوا ستھان پر ایسا پریورتن کیا ہوا گروپ تیار کرو. جو بھی زون آئے ہر ایک زون میں कहां 100 है, कहां 50 सेवा केंद्र है, गीता पाठशालाएं तो बहुत है, लेकिन हर एक जोन अपने एरिया में जहां जहां सेवा केंद्र है वहां से ऐसा परिवर्तन किया हुआ सैंपल तैयार करो, आप लोगों को मालूम है। फिर बाबा नीचे उदाहरण दे रहे हैं। तो युवकों में क्या है, डबल शक्ति। कौन कौन सी शक्ति? एक तो शारीरिक शक्ति है और दूसरी आत्मिक शक्ति है। संसार में जो वो युवा है वो क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं, अशांति करते हैं, और क्या करते हैं? तंग करते हैं सरकार को, और क्या करते हैं? हंगामा करते हैं, उत्पात मचाते हैं, विप्लव करते हैं, और क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं, और क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, पापाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। तो ऐसे जो युवा है संसार का, अशांत है, भटक रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसको राह दिखाना। संसार में जो कुछ करते हैं हमको क्या करना है? तो डबल शक्ति से डायमंड जुबली में क्या विशेषता दिखाएंगे? रैली निकालना, फंक्शन करना, ये तो करते ही रहते, कितनी बार किया, बहुत बार किया। अब क्या करना है? जो अज्ञानी युवा है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान शब्द अच्छा है, और अज्ञान शब्द कल की मुरली से बहुत बुरा है। तो ऐसे अज्ञानी जो है उनको क्या करना है? दिशा दिखानी है। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई एसोसिएशन तैयार करना है उससे, जो ऐसे नुकसान करने वाले हैं उनको परिवर्तन करके दिखाना है। संसार के जो युवा है, संसार की जो आत्माएं हैं, उन्हें परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करेंगे उनको? क्या हम करें जो वो परिवर्तन हो जाए? स्वयं के जीवन से, अपने जीवन से बाप का परिचय दो। अभी भी था ना संडे मुरली में युगलों से मुलाकात। सन्यासी भी तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, पर कैसे? जब अपने जीवन से बाप का परिचय देंगे तब। तो आत्माओं को परिवर्तन करने की विधि है स्वयं को परिवर्तन करना। आत्माओं के जीवन में परिवर्तन करने की विधि है स्वयं के जीवन में परिवर्तन करना।
स्विच ऑफ कर दो पीछे जो भाई को, स्विच ऑफ कर देगा।
जब तक हम स्वयं को परिवर्तन नहीं करते, दूसरों के जीवन में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। एक बहुत बड़ा विचारक था, उसने लिखा है अपनी जीवन कथा में कि मैं जब बहुत छोटा था तो मुझमें इतना उमंग था, इतना उत्साह था, इतनी क्रांति की भावना थी, और इतना जीवन में उत्साह था कि मैं सोचता था कि सारे विश्व को परिवर्तन कर दूं। इतना नशा था मुझमें कि सारे ही विश्व को मैं परिवर्तन कर दूंगा। बहुत प्रयत्न किया सारे विश्व को परिवर्तन करने का, विश्व परिवर्तन नहीं हुआ। पर मैं लड़ता गया, संघर्ष करता गया, परंतु विश्व परिवर्तन नहीं हुआ। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा विश्व को परिवर्तन करना बहुत कठिन है, क्यों ना मैं अपने परिवार को ही बदल दूं। परिवार को बदलना कम लोग है, सदस्य कम है, इस परिवार को मैं बदलता हूं। और प्रयत्न करते गया अपने ही परिवार को बदलने का। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लिखता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। पता चला परिवार का एक भी सदस्य परिवर्तन नहीं हुआ। सारा जीवन लगा दिया परिवार को परिवर्तन करने में, और अब भगवान के सामने खड़ा हूं और भगवान से कहता हूं कि मैं विफल हुआ। अब मेरे सामने एक ही मार्ग बचा है, और वो है स्वयं को परिवर्तन करने का। शायद यही मैं कर सकता हूं, भगवान उससे कहते हैं, पर अब बहुत देरी हो गई है। विश्व को परिवर्तन करने का मार्ग अपने से चालू होता है। दूसरे व्यक्ति को परिवर्तन करने का मार्ग स्वयं से चालू होता है। हम इस संसार की आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं को परिवर्तन नहीं कर देते। यह संकल्प ही गलत है कि हमें विश्व को परिवर्तन करना है। उसकी पहली सीढ़ी, पहला पायदान स्व है। सारी क्रांति, सारा ही परिवर्तन, सारा ही रिवॉल्यूशन, सारा ही रिफॉर्म स्व से चालू होता है। तो आजकल की जो ज्ञानी युवा है, उनका अपना ग्रुप है, उनका अपना संगठन है, वो क्या करते हैं, देश को में नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट को तंग करते हैं। तुम एक ऐसा संगठन तैयार करो, संघर्ष एक एसोसिएशन, जो क्या करे, उनको परिवर्तन करके दिखाओ। स्वयं को देख, आपको देखेंगे तो वो परिवर्तन होंगे। प्रैक्टिकल में हर एक युवा अपने अपने सेवा स्थान पर ऐसा परिवर्तन किया हुआ ग्रुप तैयार करो। जो भी जोन आए, हर एक जोन में कहां 100 कहां 50 सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं बहुत, तो हर एक जोन अपने एरिया में जहां जहां सेवा केंद्र है वहां से ऐसे परिवर्तन किया हुआ सैंपल तैयार करो। इंग्लिश में 3 शब्द है, एक है रिफॉर्म, एक है रिवॉल्यूशन और तीसरा है रेबेलियन। रेबेलियन पहला है सुधार करना, जो समाज सुधारक होते हैं ना, समाज को सुधारते हैं, एक तो वो रिफॉर्म करना। दूसरे होते हैं रिवॉल्यूशन, जो एक महान परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन, एक महान क्रांति लाते हैं। और तीसरा है विद्रोह, बगावत। तीनों में ही हलचल होती है। सबसे ऊपर का जो है वो है रिफॉर्म, जिसमें समाज परिवर्तन होता है। जैसे सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। परंतु रिफॉर्म जो शब्द है बहुत ही ऊपर का है, सतह का है, सुपरफिशियल है, ऊपरी ढांचा जिससे बदलता है। जैसे कमरा बदल रहा है पर अंदर व्यक्ति जो है वो वैसे ही बेहोशी में है, कमरा बदल दिया है, ऊपर ऊपर का ढांचा बदल दिया है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, वो है रिफॉर्म। समाज की कोई एक प्रथा थी वो बदल दी, सती प्रथा थी उसको बदल दिया, वो अब नहीं रही, परंतु लोग अभी भी वैसे ही है। अंत चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ऊपर का ढांचा जो है वो बदला है। तो एक शब्द है रिफॉर्म, समाज में रिफॉर्म करना, समाज को परिवर्तन करना, जो कि सामूहिक है। एक दूसरा शब्द है जो उससे थोड़ा गहरा है, वो है रिवॉल्यूशन, मूलभूत परिवर्तन या महान क्रांति। जब जब विश्व में ऐसी क्रांति हुई है, बहुत कुछ घटित हुआ है, रूस की क्रांति रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1857 की क्रांति, परंतु एक दुर्भाग्य की बात भारत के साथ जो हुई है कि जितनी क्रांतियां हुई है सब विफल हुई है। हमें स्वतंत्रता मिली, परंतु वो स्वतंत्रता भी कभी कभी प्रश्न लगता है कि ये हमारे वजह से मिली या दी गई है ऊपर से। तो दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में बहुत थोड़ा गहराई में जाके मैनर्स, एटिकेट्स, जो व्यक्ति का आचरण है वो थोड़ा थोड़ा बदलता है। और सबसे गहरा शब्द जो है वो है विद्रोह, रेबेलियन, स्वयं स्वयं से क्रांति, अर्थात व्यक्ति का परिवर्तन। व्यक्ति जहां बदलता है, व्यक्ति की रूढ़िवादिता जहां बदलता है, वो जबरदस्त क्रांति का जबरदस्त विरोध करता है, उन सभी धारणाओं का जो अब तक वो कर रहा था, उन सभी रूढ़िवादियों का जो अब तक उसके चित्त में समाई हुई थी, अब तक की वो सारी आदतें, अब तक का स्थापित किया हुआ वो सारा धर्म, अब तक की वो सारी धारणाएं, अब तक की उसकी समझ, अब तक की उसकी सोच, उसके संकल्प, उसके बोल, उसके कर्म, सीधा सबसे अंत अंतस में जाकर, अंतस जगत में जाकर जहां परिवर्तन होता है, वो विद्रोह कहलाया जाता है। स्वयं स्वयं से विद्रोह करता है व्यक्ति। वो जो परिवर्तन है वो मूलभूत परिवर्तन है, वो जो परिवर्तन है वो है स्व का परिवर्तन। तो जहां विद्रोह होगा स्व की विचारधाराओं से, स्व की आदतों से, जब पता चलेगा कि यह आदत पुरानी है, यह आदत झूठी है, यह आदत धोखा देने वाली है, ये संकल्प छलने वाला है, ये जो मन की धारणा है उससे हम उन्नति को प्राप्त नहीं हो रहे, स्वयं स्वयं से विद्रोह, वो है रिबल, उसको कहा जाता है रिबल, बागी, बगावत करने वाले, विद्रोह करने वाले, ऐसी विप्लव की जो अवस्था है, रिवॉल्यूशनरी, ऐसी रिवॉल्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो करना है। तो तीन तल है, शुरुआत होगी रिवॉल्ट से, शुरुआत होगी बगावत से, शुरुआत होगी विद्रोह से, स्वयं ही स्वयं की चेतना में विद्रोह करना है। कौन कौन सी धारणाएं हैं जिनको उखाड़ कर फेंक देना है? ऐसा जब रिवॉल्ट होगा, ऐसा जब रेबेलियन होगा, ऐसे जब सभी रेबेल बन जाएंगे, ऐसे जब ये जब बागी बनेंगे, तब कहीं जाकर इस समाज में रिवॉल्यूशन होगा, इस समाज में क्रांति होगी। और जब इस समाज में क्रांति होगी उसके बाद फिर एक रिफॉर्म आएगा। तीनों ही तल पर हमें कार्य करना है, ऐसा कोई एसोसिएशन तैयार करना है। उनमें से जो ऐसे नुकसान करने वाले हैं उन्हों को परिवर्तन करके दिखाओ, और जब ऐसा सामूहिक परिवर्तन होगा समाज में, तो इस परिवर्तन में सब परिवर्तन हो जाता है। जो न चाहता है परिवर्तन होना वो भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रैक्टिकल में हर युवा अपने सेवा केंद्र पर ऐसा परिवर्तन किया हुआ ग्रुप तैयार करो, एक एक सेवा केंद्र ऐसा परिवर्तन हो जाए, चाहे वो मधुबन हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो गीता पाठशाला हो, चाहे वो ऐसे ही कोई युद्ध के ग्रुप, बाहर के जो ग्रुप है, क्लब हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, सभी परिवर्तन हो जाए। तो पर उसकी शुरुआत होगी अंदर से, स्वयं से। आप लोगों को मालूम है जब डाकुओं का हुआ था तो एक डाकू परिवर्तन हुआ। वास्तव में परिवर्तन भी वही व्यक्ति होता है, अगर उस अर्थ में देखा जाए, जो इतना असत्य में चला जाता है, इतना असत्य में चला जाता है कि उसे असत्य की व्यर्थता का जब पता चलता है, उसमें जो परिवर्तन आता है वो बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। जो पहले से ही थोड़े थोड़े असत्य में है उनमें इतना परिवर्तन नहीं आता, जो पहले से ही थोड़े 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 ज्ञान में चल रहे वो वैसे ही चलते रहते हैं। जो अचानक अज्ञान से ज्ञान में आ जाते, जो अब तक बहुत जबरदस्त विरोध करने वाले थे, जब उनके अंदर जागृति आती है तो वो ऐसे ज्ञान में आते हैं कि सबसे आगे निकल जाते हैं जो विरोध करने वाले। जो थोड़ा 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 करते रहते सहयोग, वो वैसे ही चलते रहते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है। जो जितना ज्ञान में, जितना जिसका अज्ञान जितना सघन है उसका ज्ञान भी उतना ही सघन हो जाता है, जिसका अंधेरा जितना प्रगाढ़ है उसका प्रकाश भी ऐसा ही तेज हो जाता है। जो रात की तारीकी में जितना भटका हुआ है, जैसा ही प्रकाश आता है वो स्वयं प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। जो डाकू है, शास्त्रों में उदाहरण है अंगुलीमान, जो भी रास्ते में मिलता है उसकी अंगूठी अंगूठा या उंगली काटता है वो। ऐसा शायद ही कोई है जो बचा था, जो बुद्ध उसको मिलते हैं, उसकी शांत प्रतिमा को वो देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति मुझसे डरता क्यों नहीं है, मैं तो डाकू हूं और मेरी प्रसिद्धि है सारे जगत में, सारा संसार मुझसे डरता है, सारे लोग मुझसे डरते हैं, ये क्यों नहीं भयभीत होता है। इतना शांत चित्त व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं। बुद्ध ने उसे कुछ कहा नहीं अभी, केवल वो तो खड़े है। उसे तो लोगों ने कहा था यहां से नहीं जाओ, वो आएगा डाकू, परंतु फिर भी वहां से जाते हैं। ऐसा डाकू निर्दयी है, जो बेदर्द निष्ठुर, जिसके हृदय में ममता दया करुणा प्रेम नहीं है, अचानक परिवर्तन होता है। दिखाया है कि बुद्ध उससे कहते हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, एक कार्य नहीं कर सकते, तुम बहुत शक्तिशाली हो परंतु तुम्हारे सामर्थ्य में अभी भी कमी है। पूछता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। वो उसको कहते हैं कि वो जो झाड़ है उसका पत्ता तोड़ो, वो तोड़ता है और कहता है अब उसको फिर से लगा दो। वो कहता है ये कार्य मैं नहीं कर सकता और उसके चरणों में गिर जाता है। बुद्ध के उसके पहले भी बहुत सारे भिक्षु थे, बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, उन शिष्यों में उन भिक्षुओं में वह दिव्यता नहीं आती है जो कि अंगुलीमान में माल में आती है। वो जो ऐसा भिक्षु बनता है वैसा भिक्षु नहीं बन सके पाए कोई। उसमें जो दया थी, उसमें जो करुणा थी, उसमें जो प्रेम था, बाकी भिक्षुओं में इतना नहीं था। जाता है और समर्पण करता है स्वयं को, उसके नाम पर कितने बड़े बड़े इनाम होते हैं। बीच सड़क पर जाकर राजा के दरबार के सामने जाकर समर्पण करता है, सारे लोग उसे डरते भागते हैं और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करने आया हूं, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। और जब ऐसा होता है और लोगों को लगता है कि इसके पास शस्त्र नहीं है, तो सबसे पहली बात जो लोग करते हैं उसे पत्थर मारने की, उसको इतना मारते घायल कर देते हैं। अब तक उससे डरते थे, अब करुणा का जन्म हुआ है। और जो करुणा, जो दया बुद्ध में थी, वही करुणा और वही दया उसमें आती है। तो समाज में ऐसा जब परिवर्तन आता है, ऐसा परिवर्तन जब संसार की आत्माएं देखती है, तब उसमें परिवर्तन आता है, तब तक नहीं। यज्ञ का भी ये एक उदाहरण बाबा ने यहां दिया है। जब डाकुओं का हुआ तो एक डाकू परिवर्तित हुआ, एक एग्जाम्पल निकला और देखा गया कि एक डाकू कहां भी अपना अनुभव सुनाता है तो सभी को बहुत रुचि होती थी। तो आप लोग फिर ऐसा एसोसिएशन, जहां संगठन होता है वहां से जितने तैयार कर सको उतने निकालो, एग्जाम्पल तैयार करो। जो कार्य करना है बहुत ही सूक्ष्म है, एक है हजारों की सेवा करना, लाखों करोड़ों की सेवा करना, एक है कुछ की सेवा करना, एक है एक की ही सेवा करना, पर वो एक हजारों की सेवा करेगा। वो एक बहुत गरीब हो सकता है, जरूरी नहीं कि अमीरों की ही सेवा करनी है। वो एक इतना गरीब हो सकता है, परंतु वो गरीब व्यक्ति यदि परिवर्तन हो जाए, उसका स्वभाव, उसका क्रोध यदि शांत हो जाए, तो वो भी समाज में परिवर्तन कर देगा, वो अमीरों को परिवर्तन कर देगा। किसको परिवर्तन करना आसान है? जीवन अमीर या गरीब?
मध्यम
गरीब। एक है अमीर, एक है गरीब। मीना सिस्टर, किसको परिवर्तन करना था? ड्रामा छोड़कर अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, फिर भी आसान किसका है वो हम पूछ रहे हैं। गरीब
सुनेगा बेचारा,
साहूकार को परिवर्तन करना, पहले उसकी कितनी खातरी करनी पड़ती है। ब्रह्मा कुमारी जाती है तो बाहर रुकना पड़ता है, पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। झोपड़ियों में जाने की कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या? गरीब को बुलाए तो, अमीर को अगर बुलाना पड़ता तो आमंत्रण पत्र लगता, वैसे ही फोन कर दो आ जाओ तो आते है क्या? इन्विटेशन कार्ड चाहिए अमीर को बुलाने के लिए। गरीबों को फोन कर दो तो, एक को बुलाओ तो दस को लेके आएगा। क्वालिटी चाहे अमीर चाहे गरीब चाहे कोई भी हो, परंतु यहाँ बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई संगठन तैयार करो कि वहां से जितने तैयार हो सके उतने निकले, अधिक से अधिक आत्माओं को संदेश देना, परंतु वह संदेश ऐसा देना कि वारिस क्वालिटी निकल जाए। जरूरी नहीं है कि बहुतों को भी संदेश देना है, कम से कम भी दे दिया, गरीब को दे दिया, परंतु यदि उसके जीवन में भी परिवर्तन आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अमीरों को तो वैसे भी आना मुश्किल है, बाइबल में लिखा है ना कि सुई की जो नोक है उसमें से ऊंट निकल सकता है, अमीरों को आना मुश्किल है स्वर्ग में। गरीब तो बहुत आसान है, बाप तो गरीब निवास है। दिखाया गया है कि दो पादरी है जो कि स्टूडेंट्स थे, पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ एक ही धार्मिक विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होते, स्नातक बनते हैं एक ही यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में, परंतु दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क था। एक बहुत अहंकारी जो सोचता था मुझे बहुत सेवाएं करनी है, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है, उसका अहंकार छोटी सेवाओं करके करने के लिए राजी नहीं था। दूसरा था जो बहुत विनम्र था। दो पादरी जो कि पहले तो धार्मिक स्नातक विश्वविद्यालय से निकले, और एक जो था जो लंदन के किसी बहुत बड़े चर्च में पादरी बना, जिसकी सेवा थी, बहुत बड़े चर्च में वो पादरी बना जिसका काम था जो अमीर लोग हैं उनको संदेश देना। दूसरा जो पादरी था जो बहुत ही विनम्र था, उसकी ऐसी बहुत महत्वाकांक्षा थी नहीं, उसका अहंकार इतनी शिखर पर अभी नहीं खड़ा था, वो बहुत ही विनम्र था। उसे अपनी छोटी मोटी एक नौकरी मिल गई एक छोटे से चर्च में। बहुत समय के बाद जब दोनों मिलते हैं तो जो बड़ा पादरी होता है अब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि वो केवल अमीरों की सेवा करता है, सेवा इन द सेंस उनको संदेश देना, उनको गॉस्पेल बाइबल सुनाना। जो छोटा है वो अभी भी वैसा ही है, पटेहाल खस्ता हाल, अभी भी उसी हाल में जब पहले था। और जब एक दिन दोनों मिलते हैं तो जो अमीर पादरी है उस छोटे पादरी से कहता है अपने मित्र से, अरे तुम अब तक भी वैसे ही रहे, उस जमाने जो में जो तुम्हारी हालत थी कॉलेज के दिनों में आज भी वैसे ही पटे हाल, मुझे देखो जरा, मेरे कपड़े तो देखो, मेरी तनख्वाह देखो, सरकार जो देती है पादरियों को भी तनख्वाह होती है ना, और तुम देखो। तो जो छोटा पादरी है, जो गरीब पादरी है, जो विनम्र पादरी है, वो कहता है तुम्हारा काम भी तो बड़ा है, तुम्हारा काम भी तो मुश्किल है, मेरा काम तो कितना आसान है। वो कहते हैं कैसे? वो कहता है मैं जिनको संदेश देता हूं वो गरीब लोग हैं, बेचारों को संदेश देता हूं और आ जाते हैं, तुम जिनको संदेश देते हो कितना मुश्किल है। इट इज पॉसिबल फॉर एन कैमल टू पास थ्रू एन आई ऑफ अ नीडल देन अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। तुम साहूकारों की सेवा करते हो, कितनी भी सेवा करो उनके लिए मुश्किल है कि सारी आसक्ति ये छोड़ दे, सारे मोह छोड़ दे, पैसों का धन का लालच छोड़ दे, और ऐसे जो है जो निर्मोही अनासक्त नहीं बन से वो स्वर्ग के राज्य में कैसे आएंगे। इसके लिए तुम्हारा काम तो मेरे से अधिक है, तो अच्छा ही है कि तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती है, और मेरा काम तो इतना सहज है, इतना सहज है, जिनको भी संदेश देता हूँ वो उसके बन जाते हैं। ब्लेसड आर द प्योर इन पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स शैल बी द किंगडम ऑफ हेवन। धन्य है जो गरीब है, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। तो सबको सबकी सेवा करनी है, ऐसा नहीं समझना ये अमीर है या गरीब है। जो गरीब है, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको भी संदेश देना है। उनके जीवन में भी यदि परिवर्तन आएगा तो वो समाज को, समाज के लिए एक आदर्श बनेगा। जो आदिवासी है, जिनको कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता, उनकी भी सेवा करनी है। वैश्याय जो है उनकी भी सेवा करनी है। जो गिरे हुए है सबसे पहले उनकी सेवा करनी है। जो पतित है, विकारी है, दुखी है, ऐसों की सेवा करनी है। जो समाज की मुख्य धारा से हटकर है, मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, ऐसी जो मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन से हटके है, समाज की मुख्य सभ्यता और मुख्य धारा से जो गिरे हुए है, ऐसे जो पापी, ऐसे जो पतित, उनकी सेवा करने, वो हमारी राह देख रहे हैं, उन तक हमें पहुंचना है। कौन देगा उन्हें संदेश? मध्यम वर्गियों को तो सभी संदेश दे रहे, इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी संस्थाएं और अमीर, परंतु जो एकदम गिरे हुए हैं, वहां तक हम अब तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे जो भटकी हुई जमात, ऐसे जो भूले भटके, ऐसे जो आदिवासी, ऐसी जो वेश्याएं, अधम अधम, नीच अति नारी, शबरी श्री राम से कहती है, हे राम, सब लोग कहते थे कि तुम नहीं आओगे, पर मुझे विश्वास था तुम आओगे। कितने वर्ष तक उसने प्रतीक्षा की, तब से प्रतीक्षा कर रही है, जब राम का जन्म ही नहीं हुआ है। उसके गुरु मतंग ऋषि उसे कह के गए कि राम आएंगे। कब कह के गए? जब तो राम का जन्म ही नहीं हुआ है, तब से इतने वर्ष वो प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी ही इस संसार की कितनी आत्माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हमें उन तक पहुंचना है। अधम अति अधम, नीच अति नारी, शबरी कहती है, मैं अधम ते अधम, पतित से पतित, नीच से नीच नारी हूं। तो फिर सभी जोन,
बॉम्बे में स्लम एरिया की,
धारवी एरिया है बॉम्बे में, धारावी बहुत बड़ा एरिया है, हम वहां तक अब तक नहीं पहुंचे।
स्लम एरिया में,
स्लम एरिया गरीबों की जो एरिया है, वहां तक हमने, उन झोपड़ियों में, उन झुग्गी झोपड़ियों में हम अब तक नहीं पहुंचे, उन तक भी पहुंचना है। क्या उनमें कोई ब्राह्मण आत्माएं नहीं है? सभी जगह है। आज किसी को दिया है टन?
नहीं भाई, सोमवार को
आज है
ना, तो नहीं भाई है।
फिर सभी जोन के जो भी निकलेंगे उनका विशेष सभी का मिल करके फंक्शन रखेंगे, और उनमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दिखाएंगे कि ये युवा क्या करते हैं और वो युवा क्या करते हैं। तो युवा तैयार है, नंबर लेना है, हाँ या ना? कितना टाइम चाहिए? डायमंड जुबली के 6 मास चाहिए, 4 मास चाहिए, कितना टाइम चाहिए? 95 में पापा पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के युवा क्या करेंगे, जवाब दो, मुश्किल लगता है क्या? तो जो हाँ कहते हैं करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, यूपी वाले करेंगे, हाँ बोलो या ना बोलो, कितना टाइम में करेंगे? डायमंड जुबली के 6 मास चाहिए, 6 मास के बाद ऐसे नहीं कहना तो कोई मानता नहीं, दोबारा मार्क्स दे दो। चाहे कोई ज्यादा एग्जाम्पल तैयार करे, चाहे कम करे, लेकिन ना शब्द नहीं आना चाहिए, ना शब्द नहीं आना चाहिए। मिलिट्री में नियम है, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये मत कहो कि क्यों, बट करो और मरो। ये क्यों वो क्यों, ये प्रश्न नहीं पूछना। दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़। आर्म शत्रु सामने खड़ा है या ना खड़ा है, आदेश मिला है, आक्रमण तो आक्रमण, चाहे सामने कुछ है या नहीं है। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये है रूहानी मिलिट्री, वो है रूहानी सुप्रीम कमांडर। तुम हो सभी सालवेशन आर्मी, रूहानी आर्मी। जो भी आदेश मिले आक्रमण तो आक्रमण। तो बाबा कह रहे हैं जो भी मिले ना नहीं कहना, हाँ कहना, ये एक साधना है। हाँ कहने की साधना, कौन सी साधना? हाँ की साधना।
कुछ भी नहीं आता होगी,
कुछ आता नहीं है, पर कहा गया ये सेवा करो, तो क्या कहना?
हाँ जी,
हाँ जी की साधना, हाँ की साधना, यस माय लॉर्ड की साधना, जी हुजूर की साधना। कह दो हाँ तो क्या होगा फिर? नहीं आता भी आने लगेगा, नहीं आता तो ढूंढने लगेंगे कैसे किया जाए, नहीं आता तो उन उनसे पूछने लगेंगे जिनको आता है, नहीं आता तो क्योंकि अब सिर पे बनाई है, अब करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे?
धक्का लगेगा बुद्धि को,
बुद्धि को ऐसा धक्का लगेगा कि बुद्धि चलना चालू करेगी, सारी ही शक्तियां एकाग्र होगी और सीखना चालू करोगे। इसके लिए यदि इस क्लास में कभी भी कुछ भी कहा जाए तो ये मत कहना कोई व्यक्ति कह रहा है, कहना समझना सीधा परमधाम से आ रहा है उतर कर गृह कार्य। तो ना नहीं कहना, ना कहना रॉयल आत्माओं की, रॉयल स्टूडेंट्स की निशानी नहीं है, ठीक है ना मीना सिस्टर? परंतु उसमें भी हाँ कहकर फिर हाँ की साधना, हाँ जी की साधना, यस माय लॉर्ड की साधना। इसके लिए एक होमवर्क अभी सभी को, कौन करेगा? यस माय लॉर्ड की साधना कैसे करे? जो करेगा कम से कम कल इस टॉपिक पर 15 पॉइंट जो लिख के लाएगा वो हाथ खड़ा करो। हाँ जी की साधना, एक भाई ने तो खड़ा कर दिया। नहीं जो नए है, जो यहाँ के नहीं है, नहीं जो यहाँ वाले नीचे सब, जो यहाँ से नहीं है, एक स्वाति नहीं नाम बोल रहा हूँ मैं, चेतना बहन। तो चेतना बहन कल लिख के लाएंगे क्या? यस माय लॉर्ड की साधना, जी हुजूर की साधना, हाँ जी का पाठ पक्का कैसे करें, उसके बारे में 15 पॉइंट लिख के लाने हैं, ठीक है? तो बाबा क्या कह रहे हैं, चाहे कोई ज्यादा एग्जांपल तैयार कहे चाहे कम, लेकिन ना शब्द नहीं लाना चाहिए। बाबा को पसंद नहीं है ऐसे शब्द, बिल्कुल संडे की मुरली में बाबा सहन नहीं कर सकते, ऐसा एक जगह आया है, बाप सहन नहीं कर सकते। तो इसमें पहला नंबर कौन लेगा? टीचर समझती है, हो जाएगा, होना ही है। गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल चाहिए, 15 पॉइंट्स आप लाना और दूसरे जो भाई है वो 10 पॉइंट लिख के लाना, ठीक है? दोनों मिलके आपस में राय नहीं करना, अलग अलग। गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल चाहिए, प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रैक्टिकल एविडेंस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऐसा प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण। आप लोग कहते हो ना कि हम सोशल वर्क बहुत करते हैं। सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, समाज कार्य, समाज सुधारक, समाज सुधार का कार्य, तो वो मिसाल चाहती है। केवल कहते नहीं रहना कि हम बहुत करते हैं। क्या करना है? करके दिखाना। केवल कहते नहीं रहना मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसा ग्रुप तैयार करना। और टीचर्स का काम है, क्या काम है टीचर्स का?
उनका
कराना, ऐसा ग्रुप तैयार करना, और टीचर्स का काम है कराना। अच्छा, तो ये मुरली थी 13-12-95। क्या क्या सुना?
डबल शक्ति,
कुमारों में, युवकों में डबल शक्ति है। एक शारीरिक शक्ति भी है तो आत्मिक शक्ति भी है। केवल कुमार नहीं, केवल युवक नहीं, सभी में है। कुमारियों में भी है तो कुमारों में भी है तो माताओं में तो ट्रिपल शक्ति है। ये माता में तो बहुत ज्यादा दिख रही है,
लग रही है।
कितनी उम्र है माता जी की? आपकी उम्र कितनी है? 70 के ऊपर ही होगी माता जी की। 17 शरीर की उम्र है 70 और आत्मा की
17 साल।
ऐसा युद्ध का संबंध शरीर, युवा होने का संबंध जो है वो शरीर से है ही नहीं। जानकी दादी यूथ है या ओल्ड है, क्या कहेंगे?
ओल्ड यूथ।
कुमुद बहन युवा है या
महायुवा?
तो यूथ होने का संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है। आत्मा में नया उमंग, संडे की मुरली, नया उमंग, नया उत्साह, नया उत्सव, अविनाशी उत्साह, सदा रहने वाला उमंग, ऐसा जो है उसको कहते हैं मनाना। ये है दिवाली मनाना। दिवाली थी नहीं, दिवाली है। हर दिन हर समय प्रतिपल विठोबाचे राज्य आम्हा निथ दीपवाड़ी। महाराष्ट्र के एक संत कहते हैं तुकाराम, विठोबाचे राज्य, भगवान के राज्य में आम्हा निथ दीपवाड़ी, हर दिन दिवाली है यहाँ पर। तो ऐसा उमंग, तो कुमार अर्थात युवक अर्थात ब्राह्मण अर्थात कुमारी अर्थात सदा क्या? युवा, डबल शक्ति। यदि हाँ युगल है और पवित्र रहना है, वहां क्या चाहिए कल की मुरली से? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। हिम्मत चाहिए। और युवक युगल है परंतु अब ज्ञान में चलना है तो क्या चाहिए कल की मुरली से? कल की मुरली से, संडे की मुरली से नहीं, बर्तन बर्तन नहीं, कल की मुरली से। वो संडे की मुरली है, कल की मुरली से ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। सुशील भाई, भाई को इनाम दो, एक पीछे वाले कुछ है। क्या चाहिए? ज्ञान। कहाँ से भाई? राजकोट से। ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। अगर यहाँ चलना है
इनाम में होमवर्क,
ज्ञान की पराकाष्ठा कैसे हो उसके ऊपर 5-10 पॉइंट लिख के लाना। ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे जीवन में कैसे हो, क्या करें कि जिससे ज्ञान अपने शिखर पर पहुंच जाए और दमकने लगे, क्या करें कि लाइट हाउस बन जाए ज्ञान और वहां से दूसरे देखे और आकर्षित हो जाए उस ज्ञान की तरफ। ऐसा ज्ञान स्तंभ, ऐसा लाइट हाउस कैसे बने? तो क्या लिख के लाएंगे? ज्ञान की पराकाष्ठा कैसे हो इस ब्राह्मण जीवन में, उसकी 10 पॉइंट्स। दूसरा क्या कहा अभी जो पढ़ा उसमें? सेवा करनी है, एसोसिएशन तैयार करना है, संगठन तैयार करना है, ग्रुप तैयार करना है, मिसाल कायम करनी है, गवर्नमेंट को दिखाना है और परिवर्तन करना है। परिवर्तन की प्रक्रिया जो 3 बताई, सबसे पहला है विद्रोह अपनी आत्मा से, उसके बाद में क्रांति समाज में, और फिर रिफॉर्म। ये तीनों ही चीजें वहां आ जाए। उदाहरण बाबा ने डाकुओं का दिया, पिता को उकसा दिया, तो जैसे उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, तो इस समाज की जो भोली भटकी जमात है जिन तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है, ऐसे इनएक्सेसिबल जो लोग हैं वहां तक हमें पहुंचना है और सभी की सेवा करनी है। ओम शांति।